यीशु ने वहां से विदा होकर तीरुस और सीदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए, मेरी बेटी एक अपदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। यीशु ने उसे उत्तर दिया, उनके शिष्यों के पास आकर यीशु ने उन्हें उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्य उनके पास आकर उनसे निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं केवल इसराइल के घराने को की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। इतने में उस स्त्री ने आकर यीशु को दंडवत किया और कहा, प्रभु मेरी सहायता कीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना न ठीक नहीं है। उसने कहा, जी हाँ प्रभु, फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही है। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, नारी तुम्हारा विश्वास महान है, तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। यह प्रभु का सुसमाचार है। मैंने जब इस सुसमाचार पाठ को पढ़ा और प्रभु से यह प्रश्न किया कि सुसमाचार में ऐसा क्यों लिखा गया है कि प्रभु ने उसे उत्तर नहीं दिया। मुसीबत में पड़ी एक औरत, उसकी बेटी बीमार है, बहुत ज्यादा बीमार है, उसकी हालत बहुत बुरी है। और अपनी परेशानी को लेकर जब वो स्त्री, वो गरीब स्त्री यीशु के पास आती है और चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, हे प्रभु मुझ पर दया कीजिए, मेरी बेटी को चंगा कीजिए, तो पवित्र ग्रंथ कहता है यीशु ने उसे उत्तर नहीं दिया। तो मैं जब ये पढ़ रहा था, मेरे मन में यही प्रश्न आया, तो ये क्यों लिखा गया है यीशु ने उसे उत्तर नहीं दिया। तो तुरंत ही पवित्र आत्मा ने मुझे ये बताया, तुमने पूरा नहीं पढ़ा, तुम पूरा पढ़ो। तो मुझे पूरा पढ़वाया, यानी आज का पाठ है अध्याय 15, संत मत्ती का अध्याय 15, 21 से 28 तक। इसमें एक बार ये दिया गया है कि यीशु ने उत्तर नहीं दिया। अगर आप उसको आगे पढ़ेंगे, हर एक वाक्य में 3 बार प्रभु कहते हैं यीशु ने उत्तर दिया। एक बार सुसमाचार कहता है यीशु ने उत्तर नहीं दिया, और इसके बाद 3 बार सुसमाचार कहता है यीशु ने उत्तर दिया। कभी कभी हमको भी प्रभु एक बार उत्तर नहीं देते, लेकिन उसके बाद याद रखिए, यीशु को नहीं छोड़ना, यीशु के पीछे पड़ना। इसी कनानी स्त्री के समान यीशु के पीछे अगर हम पढ़ेंगे तो 3 बार हमें भी सुनाई देंगे यीशु ने उत्तर दिया। तो यीशु अगर उत्तर नहीं देते हैं, इसीलिए नहीं कि यीशु हमें कृपा प्रदान नहीं करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए हैं कि वे प्रभु कृपा का बंदोबस्त कर रहे हैं, कृपा का बंदोबस्त कर रहे हैं, हमको ढेर सारी कृपाओं से भरने के लिए हमको तैयार कर रहे हैं और हमारी कृपा के रास्ते खोल रहे हैं। अभी अभी जहाँ मैं रहता हूँ, कई लोग आप लोगों ने आके देखा है, वहाँ पर बाढ़ हुआ था। वहाँ पर जो खेती होती है, नीचे की ज़मीन पर खेती होती है, और जब नीचे की ज़मीन में खेती होती है तो वहाँ पानी रहता है, तो पानी को बाहर मोटर से पानी को बाहर फेंक कर कम खेती करते हैं। खेत में पानी डालकर नहीं, लेकिन खेत के पानी को बाहर फेंक कर हम खेती करते हैं। तो अभी अभी बहुत ज़्यादा पानी आ रहा था, तो खेत उधर खेती थी, चावल की खेती है वहाँ पे, और पौधे सब खड़े थे। उस समय बहुत ज़्यादा पानी आया। लेकिन जब पानी आता है लोग क्या करते हैं, लोग वहाँ पर काली मिट्टी डाल के उस पानी को रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन पानी तब तक ये काली मिट्टी नहीं रोक पाएगी जब तक ये सूख नहीं जाए। ये काली मिट्टी सूखेगी तभी तो पानी को रोकेंगे, तो उसके लिए रुकना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि पानी छोड़ दो और काली मिट्टी उसको रोक देंगे, नहीं, काली मिट्टी रख देंगे, काली मिट्टी सूखेगी, उसके बाद ये काली मिट्टी पानी को रोकेंगे, नहीं तो ये काली मिट्टी भी बहकर चली जाएगी। कृपा के लिए कभी कभी रुकावट होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमें थोड़ा सा रुकना पड़ता है। हमारे हृदय में यीशु की कृपा को ग्रहण करने के लिए हमारे हृदय को हमें तैयार करना पड़ता है, इसलिए कभी कभी थोड़ा कुछ रुकना पड़ता है। लेकिन बाइबल के वचन को पढ़ते समय, बाइबल के पन्ने पलटते समय हमें यह मालूम होता है कि ईश्वर उनकी ओर दुहाई देने वालों की प्रार्थना उनको कभी नहीं टुकराते हैं। स्तोत्र 50 वाक्य 15 में लिखा गया है, स्तोत्र 50 वाक्य 15 में लिखा गया है, संकट के समय मेरी दुहाई दो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। संकट के समय मेरी दुहाई दो, मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम मेरा सम्मान करोगे। संत लूकास के सुसमाचार के अध्याय 13 में लिखा गया है कि एक विश्राम के दिवस प्रभु यीशु सभागृह में प्रवचन दे रहे थे और उसको सुनने के लिए बहुत सारे लोग बैठे थे। उनमें से एक ऐसी स्त्री थी जो 18 वर्षों से बीमार थी, 18 वर्षों से वो बीमार थी और वो बीमारी के कारण एकदम झुक गई थी। वो खड़ी सीधे खड़ी नहीं हो सकती थी, एकदम झुक गई थी और किसी भी तरह सीधी नहीं हो पाती थी। इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। जब यीशु ने उसे देखा तो यीशु ने उसको पास बुलाया, उस औरत को, बूढ़ी औरत को पास बुलाया और उससे कहा, नारी तुम अपने रोग से मुक्त हो गई हो, तुम अपने रोग से मुक्त हो गई हो। और एक यीशु के शब्द मात्र से वो सीधी खड़ी हो गई। उसने कुछ कहा नहीं था लेकिन उसके मन के अंदर जो आग बढ़ती थी, उसकी पीड़ा को व्यक्त करते हुए जो आवाज उसके मुंह से शायद थोड़ी सी निकलती थी, धीमी आवाज निकलती थी, उसको भी सुनकर प्रभु यीशु उसको चंगाई प्रदान करते हैं। शमूएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 1 में हम अन्ना के बारे में सुनते हैं। शमूएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 1 में हम अन्ना के बारे में सुनते हैं। वहाँ पर कहा गया है कि अन्ना की कोई संतान नहीं थी, कोई बच्चा नहीं था, तो इसलिए वो बहुत दुखी थी, बहुत दुखी थी और वो मंदिर में, प्रभु के मंदिर में आकर प्रार्थना करती थी। पवित्र ग्रंथ कहता है, शमूएल के पहला ग्रंथ अध्याय 1 वाक्य 12 और 13, जब वो बहुत देर तक प्रभु से प्रार्थना करती रही तो एली उसका मुंह देखने लगा और धीमे स्वर से वो बोलती थी। उसके ओंठ तो हिल रहे थे किंतु उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। कितनी सुंदर बात है, उसके अंदर बहुत पीड़ा है। अन्ना के हृदय में, उस औरत के हृदय में बहुत पीड़ा है। अपनी पीड़ा को, अपनी व्यथा को, अपने दुख को, दर्द को वो अपने शब्दों से व्यक्त नहीं कर पाती है, इसलिए वो धीमी आवाज में बोलती है। कुछ आवाज नहीं निकल रही है लेकिन उसके होंठ हिल रहे हैं। एली ने उसको देखा, ईश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी। हालांकि उसकी आवाज किसी दूसरे को सुनाई नहीं दे रही थी लेकिन उसके दिल की गहराई की आवाज ईश्वर के कानों में पहुंच गई और ईश्वर ने उसे उत्तर दिया और उसे कहा, आशीष ग्रहण करके जाओ, तुम्हें ईश्वर की कृपा प्राप्त है। वो 1 साल के बाद एक पुत्र को जन्म देती है, उसका नाम है शमूएल। बहुत बड़े बनते हैं। जब कभी माता पिता प्रार्थना करके, ईश्वर से याचना करके बच्चा पैदा करते हैं तो ये बच्चे महान बनते हैं। कोई कोई माता पिता शराब पी के झगड़ा करके बच्चे पैदा करते हैं तो और आशा करते हैं बच्चे बड़े बन के अच्छे होंगे, ऐसा नहीं होते। यहाँ देखो मंदिर में जाकर प्रार्थना करते हैं, दोबिंद के ग्रंथ में भी ऐसा हमें देखने को मिलता है। तोबियस और उसकी पत्नी सोने के पहले एक साथ अपना हाथ मिलाकर ईश्वर के समक्ष हाथ ऊपर करके, दोनों एक दूसरे के हाथ पकड़कर दोनों हाथों को ऊपर करके ईश्वर के समक्ष पहले प्रार्थना करते हैं फिर सोने जाते हैं। जो अच्छे बच्चे चाहते हैं वे प्रार्थना करते हैं, बच्चे के लिए अच्छे बच्चे प्राप्त होने के लिए ईश्वर से पहले प्रार्थना करते हैं फिर बच्चा पैदा करते हैं। मुसीबत के समय जो कोई ईश्वर के समक्ष गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं, ईश्वर की दुहाई देते हैं, ईश्वर की प्रार्थना को सुनते हैं, बाइबल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जहां पर ईश्वर लोगों की लाचारी को देखकर, उनकी लाचारी को, कठिनाई को, दुख दर्द को भली भांति समझ कर उनके ऊपर आशीष बरसाते रहते हैं। यौहन के सुसमाचार के अध्याय 5 में यह बताया गया है कि यरूशलेम के भेंट फाटक के पास वाले कुंड के पास अनेक अंधों और लंगड़ों और अर्धांग रोगियों के बीच में 38 साल से बीमार एक व्यक्ति पड़ा रहता है, 38 साल से बीमार। और उस व्यक्ति के पास प्रभु यीशु जाते हैं, हम पर बहुत सारे रोगी हैं, अर्धांग रोगी है, अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, उन सब के बीच 38 साल से बीमार एक व्यक्ति पड़ा हुआ था। उसके पास यीशु जाते हैं और उससे पूछते हैं, क्या तुम ठीक होना चाहते हो, क्या तुम ठीक होना चाहते हो? लेकिन उसने अपनी व्यथा को प्रस्तुत किया। उसने कहा, महोदय मेरा कोई नहीं है जो पानी के लहराते ही मुझे कुंड में उतार दे, मेरे पहुंचने से पहले ही उसमें कोई और उतर पड़ता है। प्रभु ने उसे कहा, उठकर खड़े हो जाओ, अपनी चारपाई उठाओ और चलो। 38 साल से बीमार एक व्यक्ति के हृदय की व्यथा को, उसके दुख दर्द को समझकर प्रभु उसको चंगाई प्रदान करते हैं। तो क्यों ना जब हम अपने मुसीबत के बीच में, अपनी कठिनाई के बीच में, अपने तंगाली के बीच में प्रभु को याद करें और प्रभु उत्तर न देंगे। स्तोत्रकार कहते हैं, स्तोत्र 18 वाक्य 6, मैंने अपने संकट में प्रभु को पुकारा, मैंने अपने ईश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में मेरी वाणी सुनी, मेरी दुहाई उसके कान तक पहुंची। स्तोत्रकार का अनुभव देखो, मैंने संकट के समय प्रभु को पुकारा और प्रभु ने मेरी सुनी। मार्कुस के सुसमाचार के अध्याय 5 वाक्य 22 से लेकर 31 के तक के वचन में हमें यह बताया गया है कि जायरुस नामक सभागृह के एक अधिकारी अपने घर के और प्रभु यीशु को, अपनी बेटी को चंगा कराने के लिए लेके जा रहे हैं और जाते जाते बहुत सारी जनता भीड़ प्रभु के साथ इकट्ठी होती है, एकत्र होती है। भीड़ के बीच में एक ऐसी औरत थी जो 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी, 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित एक महिला उनके बीच में थी। उस भीड़ के बीच में खड़ी होकर वो सोचती है, अगर मैं प्रभु के पास जाकर उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो अच्छी हो जाऊंगी, वो सोचती है अपने मन में। 12 साल से रक्तस्राव से पीड़ित थी, खून निकलती थी, और उस स्त्री ने सोचा अपने मन में, अगर मैं प्रभु के पास जाकर उनका कपड़ा भर छूने पाऊं तो मैं अच्छी हो जाऊंगी। और प्रभु के पास जाने की हिम्मत करती है और जैसे ही उसने प्रभु यीशु के कपड़े के पल्ला छुआ तो वो चंगी हो गई, उसका रक्तस्राव बंद हो गया, खून निकलना बंद हो गया। हमारी मन की, हमारे हृदय की दुख दर्द को प्रभु समझते हैं, हमारे कष्टों को प्रभु अभिलिख भांति जानते हैं। अगर हम आग भरकर ईश्वर की ओर देखते भी हैं तब भी प्रभु अपने हाथ बढ़ाकर हमें चंगा करेंगे। राजाओं के दूसरे ग्रंथ में अध्याय 20 में ये कहा गया है कि यूदा के राजा यहोशफात पर आक्रमण करने के लिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे राजा इकट्ठे होते हैं और सामने आते हैं। उन राजाओं के आक्रमण के डर से कांपते हुए राजा यहोशफात प्रभु के सामने गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगते हैं और पूरे यूदा देश में वे एक उपवास की घोषणा करते हैं, उपवास की घोषणा करते हैं और पूरे यूदावासी उपवास करते हैं और ईश्वर के समक्ष गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करते हैं। उन सबके सामने राजा खड़े होते हैं और प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हमारे ईश्वर क्या तू इनका न्याय नहीं करेगा, क्योंकि हम इस विशाल जन समुदाय का सामना नहीं कर पाएंगे जो हम पर आक्रमण करने आ रहे हैं, हमें मालूम नहीं कि क्या करें, इसलिए हमारी आंखें तुझ पर लगी है। राजा कहते हैं हे ईश्वर, हम बड़े बहुत बड़े संकट के सामने खड़े हैं और हमको मालूम नहीं कि क्या करना चाहिए, इसलिए हमारी आंखें तुझ पर लगी है। जब हम इतने परेशान होते हैं और हमको मालूम नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, तो हमें ईश्वर की ओर देखना चाहिए और ईश्वर से कहना चाहिए हे ईश्वर, मुझे नहीं मालूम कि आगे क्या करना है, लेकिन हमारी आंखें तुझ पर लगी है। और ईश्वर ने क्या किया, तुरंत ही यहज़ीएल नामक नबी प्रभु के आत्मा से आविष्ट होकर लोगों से कहा, तुम मत डरो और विशाल सेना से भयभीत नहीं होना, क्योंकि तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा बल्कि ईश्वर ही लड़ेगा। नबी कहते हैं लोगों से, ईश्वर की ये वाणी सुनो। ईश्वर ने अपनी वाणी नबी को सुनाया, नबी ने लोगों को सुनाया, तुम भयभीत नहीं होना, तुम्हें लड़ना भी नहीं पड़ेगा, लड़ना भी नहीं पड़ेगा। जो लड़ने के लिए आ रहे थे, जिनके बारे में भयभीत होते थे, उनके बारे में प्रभु का वचन कहता है तुम्हें लड़ना नहीं पड़ेगा, मैं लड़ूंगा, ईश्वर खुद कहते हैं। हम कभी कभी ऐसी परेशानी के सामने खड़े होते हैं जब हम डर जाते हैं, और अगर हम ईश्वर की ओर दृष्टि लगाते हैं तो ईश्वर हमसे भी कहेंगे तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें लड़ना भी नहीं पड़ेगा, मैं लड़ूंगा तेरे लिए। और ईश्वर क्या करते हैं, दुश्मनों के बीच में ईर्ष्या पैदा करते हैं, दुश्मन आपस में झगड़ते हैं, एक दूसरे को मार डालते हैं। और जब इसराइली लोग दूसरे दिन उठकर देखते हैं तो लाश ही लाश पड़े हैं, सब जगह लाश पड़ी है, दुश्मन जो उन पर आक्रमण करने के लिए आ रहे थे, जिनसे डरकर इसराइली लोग ईश्वर के सामने प्रार्थना कर रहे थे, अभी वो ये दुश्मन, उन दुश्मनों के लाश वहां पर पड़ी है। प्रभु कहते हैं मैं लड़ूंगा, तुम्हें लड़ने की भी जरूरत नहीं है, हमारे ईश्वर हमारे लिए लड़ने वाले ईश्वर है। और इसलिए स्तोत्रकार के साथ हम प्रार्थना करेंगे, स्तोत्र 118 वाक्य 5 से 15 में स्तोत्रकार कहते हैं, इसके साथ हम भी प्रार्थना करते हैं, संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया। मेरे पीछे बोलेंगे, संकट में मैंने प्रभु को पुकारा, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया, प्रभु मेरे साथ है, वह मेरी सहायता करता है, मैं अपने शत्रुओं का डटकर सामना करता हूँ, मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है, शासकों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना अच्छा है, प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया।